गाथा में आप सुन रहे हैं एरोनिका पार्कर जोन्स की लिखी कहानी साजिशबाज औरत। लीजिए सुनिए कहानी का चौथा भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना एलिजाबेथ की बातें सुनकर रेमंड उससे कुछ पैसों की डिमांड करता है। एलिजाबेथ उसकी बातें सुनकर कल बैंक जाने की बात कहती है। उधर दूसरे दिन सुबह सुबह हेजल एलिजाबेथ के घर पहुंचती है और रो रोकर अपनी बातों के जरिए उसे बताती है कि वॉल्टर के ऑफिस का एक प्यून पीटर उसके पति रेमंड पर वॉल्टर को कार से कुचलने का इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर एलिजाबेथ फौरन घर से निकलती है और रास्ते में पीटर को फोन करके उसे तुरंत उससे मिलने आने के लिए कहती है। अब आगे। पीटर एक जवान लड़का था। उसकी नजरें देखकर एलिजाबेथ को बहुत सुकून मिला। पीटर की निगाहें किसी भी चीज पर रुकती नहीं थी। एलिजाबेथ का मानना था कि ऐसे लोग बहुत बेईमान और लालची होते हैं। वो दोनों उस बड़े से मेडिकल स्टोर के कोने के दो स्टूलों पर बैठ गए। सुनो पीटर, एलिजाबेथ ने उसे संबोधित किया, मैंने वो अफवाहें सुन ली हैं जो तुम मेरे पति और हेजल के बारे में उड़ा रहे हो।
मैं वो मेरा सिर्फ अंदाजा था मैडम, पीटर ने घबराहट भरी आवाज में हकलाते हुए कहा।
अफसोस, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है पीटर, एलिजाबेथ ने दुख भरी आवाज में कहा। चंद महीने पहले हेजल के पति मिस्टर रेमंड ने मुझे इस बारे में फोन पर बताया था। हम दोनों ने इस बारे में सलाह करने के बाद ये फैसला किया था कि इस बारे में जुबान बंद रखी जाए। मेरा ख्याल था कि ये मामला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर हम कुछ कहते तो इससे बड़ी बदनामी होती, साथ ही तुम्हारे मालिक मिस्टर वॉल्टर के कारोबार पर बुरा असर पड़ता। हेजल की नौकरी भी छूट जाती, फिर उसे आगे कहीं नौकरी नहीं मिलती। तुमने ऐसी अफवाहें उड़ाकर हमारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है पीटर।
मुझे बहुत अफसोस है, मुझे माफ कर दीजिए मैडम।
इसके अलावा तुमने जो दूसरी बेबुनियाद बातें कही हैं उनसे मिस्टर रेमंड बहुत परेशान हैं, एलिजाबेथ ने आगे कहना शुरू किया। तुम सबसे कहते फिर रहे हो कि मिस्टर रेमंड ने जानबूझकर मिस्टर वॉल्टर पर कार चढ़ाई थी। वो महज एक हादसा था पीटर, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मिस्टर रेमंड की कार में कुछ खराबी है। उसे जब स्टार्ट किया जाता है तो वो एक जबरदस्त झटके के साथ आगे बढ़ती है। पीटर के चेहरे की हड्डियां उभर आईं। उसने कहा,
अगर ये बात है तो मिस्टर रेमंड को अपनी गाड़ी ठीक करवानी चाहिए। मैं गली के नुक्कड़ पर खड़ा था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैडम। उनकी गाड़ी सीधी मिस्टर वॉल्टर की तरफ आ रही थी।
खैर मुमकिन है, एलिजाबेथ ने जल्दी से कहा, लेकिन मिस्टर रेमंड जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुमने जो कुछ देखा है अगर उसे भूल जाने का वादा करो तो मिस्टर रेमंड तुम्हें उसके बदले में काफी पैसा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने ऑफिस में कहना पड़ेगा कि तुमने इससे पहले लोगों से जो कुछ कहा था वो सिर्फ एक मजाक भर था। हाँ, तुमने पुलिस से तो इसका जिक्र नहीं किया?
नहीं मैडम, पीटर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में लालच झलक रही थी।
ठीक है पीटर, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, समझदार भी नजर आते हो, तुम बहुत तरक्की भी कर सकते हो। तरक्की के लिए एजुकेशन जरूरी है। तुम रात के स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं ले लेते, एलिजाबेथ ने कहा।
इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है मैडम, पीटर ने कहा।
कितने पैसों की, एलिजाबेथ ने पूछा। पीटर ने बेहूदगी से अपना गाल खुजलाते हुए कहा,
तकरीबन $10,000 की मैडम।
ठीक है, एलिजाबेथ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ठीक है, मैं मिस्टर रेमंड को बता दूंगी,
मुझे यकीन है कि मिस्टर रेमंड तुम्हारी मदद करके बहुत खुश होंगे। क्या तुम आज रात को मिस्टर रेमंड से मुलाकात कर सकते हो? रात लगभग 8 बजे। एलिजाबेथ का जहन तेजी से काम कर रहा था। रेमंड आज रात फ्लोरिडा फरार हो रहा है। आज रात के बाद उस कमरे में ताला लग जाएगा। इस तरह उसकी उस जिंदगी का भी खात्मा हो जाएगा जो उसने उस कमरे में रेमंड के साथ गुजारी थी। पीटर को उस कमरे का पता देना खतरनाक हो सकता था। हाँ, उस बिल्डिंग के करीब एक पहियात सा रेस्टोरेंट था। उसमें कभी वो गई नहीं थी। वो ग्रीक रेस्टोरेंट के नाम से मशहूर था। उसमें औसत दर्जे के लोग खाना खाने आते थे। रेमंड भी कभी कभी उस रेस्टोरेंट से गर्मा गर्म खाना लेकर आता था। जरूर मैडम, पीटर ने जवाब दिया। एलिजाबेथ ने पर्स खोलकर पैड निकाला। उस पैड पर सुनहरे रंग का छोटा मोनोग्राम बना हुआ था। उसने बड़ी अदा से ग्रीक रेस्टोरेंट का नाम और पता लिखकर पीटर को दे दिया। फिर उसने $10 निकालकर उसे देते हुए कहा, ये $10 टैक्सी का किराया है। तुम इस पते पर आज रात 8 बजे पहुंच जाना। मिस्टर रेमंड वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। होटल के अंदर नहीं, बाहर। पीटर से बातचीत खत्म करने के बाद एलिजाबेथ सीधे बैंक गई। उसने $25,000 का चेक कैश कराया और वहां से सीधे उस दड़बे नुमा कमरे पर पहुंच गई। रेमंड हमेशा की तरह बिस्तर पर रौंधा पड़ा सो रहा था। एलिजाबेथ ने जोर से अपने पैर जमीन पर पटके। रेमंड हड़बड़ाकर उठ बैठा। उस रात एलिजाबेथ बड़े इत्मीनान की नींद सोई। सारे मामलात उसकी मंशा के मुताबिक ही तय हो गए थे। सुबह उसकी आंख फोन की घंटी से खुली। एलिजाबेथ ने नींद की खुमारी में फोन रिसीव किया। उसके पति के ऑफिस से फोन था। उसने अधनींदी हालत में ही फोन पति की तरफ बढ़ा दिया। क्या? Oh my God! उसने अपने पति की आवाज सुनी। वॉल्टर इसी तरह से कुछ शब्द बोलता रहा जिनका कोई मतलब निकालना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद उसने फोन काट दिया। बेचारी हेजल, मिस्टर वॉल्टर ने फोन बंद करने के बाद एलिजाबेथ से कहा। उसकी किस्मत ही खराब है। उसका पति रात में एक हादसे में मारा गया।
क्या?
एलिजाबेथ चौंक कर उठ बैठी। क्या हेजल का पति दुर्घटना में मारा गया? उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। रेमंड की मौत ने उसके लिए और भी आसानियां पैदा कर दी थीं। अब भविष्य में भी कभी कोई खतरा आने की उम्मीद नहीं बची थी। और ये तो देखो डार्लिंग, मिस्टर वॉल्टर ने हैरत भरी आवाज में कहा, अगर हेजल की जगह कोई दूसरी औरत होती तो कई रोज तक सदमे से निढाल रहती। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं ना, तो उसने अपनी जिम्मेदारी समझी और आज भी ऑफिस आई है। वो अभी कुछ देर में जरूरी कागजात लेकर यहां पर आ रही है। ये हादसा कहां पर हुआ वॉल्टर? एलिजाबेथ ने सरसरी तौर पर पूछा। हाईवे पर, न्यू जर्सी जाने वाले हाईवे पर, शहर से लगभग 60 मील दूर, मिस्टर वॉल्टर ने बताया। एलिजाबेथ ने घंटी बजाकर नौकरानी को बुलाया और उससे नाश्ता लगाने के लिए कहा। कुछ देर बाद नौकरानी नाश्ते की ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे से हेजल भी आ गई। उसके चेहरे से दुख जरूर झलक रहा था, लेकिन वो अब भी पहले जैसी ही चौकस थी। एलिजाबेथ ने उसे हाथ के इशारे से अंदर आने के लिए कहा। हेजल ने अंदर आते ही कागजात की फाइल मिस्टर वॉल्टर को पकड़ा दी। हेजल, मिस्टर वॉल्टर ने धीमी आवाज में कहा, हम दोनों को तुम्हारे पति की मौत से गहरा सदमा पहुंचा है। अगर हमारी कहीं भी जरूरत हो तो बेझिझक हमें बता देना। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? निश्चित ही पति के अंतिम संस्कार के लिए काफी रकम की जरूरत होगी। नहीं मिस्टर वॉल्टर, मैं आपकी इस पेशकश की बहुत शुक्रगुजार हूं, हेजल ने कहा। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस को रेमंड की जेब से $25,000 मिले हैं। वो रकम मेरे हवाले कर दी गई है, इसलिए मुझे खर्चे उठाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अलबत्ता मुझे इस बात पर हैरत जरूर है कि रेमंड के पास $25,000 आए कहां से। फिर आगे क्या होता है इस कहानी में, ये सुनिए अगले भाग में। सुनते रहिए गाथा रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे थे एरोनिका पार्कर जोन्स की लिखी कहानी साजिशबाज औरत। आपने सुना इस कहानी का चौथा भाग। कहानी का संपादन कुमार रहमान का, गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शिफाली कपूर ने।